हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु शक्ति जी, श्रीमद् भागवत का प्रातः काल का सत्संग, कल बलराम पूर्णिमा, आज उसकी तैयारी हो रही है श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान बुनाके में। तो श्रीमद् भागवत जिसका पाठ अब कर रहे हैं, पहले स्कंद का पांचवा अध्याय नारद का श्रीमद् भागवत के ऊपर शिक्षाएं व्यास देव को, और ये श्लोक जो अब हम पढ़ रहे हैं 39, इसमें व्यास देव के प्रश्न पूछने के ऊपर नारद जी अपने पूर्व जन्म की, नारद जी के तीन जन्मों का वर्णन भागवत में है। पहला जन्म उपभ्रंश नाम का गंधर्व, और फिर देवताओं की सभा में भगवान का गुणगान न करने के कारण शाप के कारण दासी पुत्र, और दासी पुत्र में भक्ति वेदांतों के संग के कारण पुनः महान भागवत शिक्षा ग्रहण करके नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं। और दासी पुत्र के शरीर छोड़ने के बाद नारद को दिव्य शरीर मिला, भगवान से वीणा मिली, और भगवान नारायण के परम भक्त के रूप में किसी भी लोक में कभी भी जा सकते हैं और भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और नारद जी की कृपा से छोटे बालक ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया। नारद जी की कृपा से प्रहलाद को मां के गर्भ में भागवत धर्म का उपदेश मिला। नारद की कृपा से व्यासदेव भागवत को इस धरती के ऊपर प्रकट कर सके मानव जाति के कल्याण के लिए। वो नारद की कृपा से वाल्मीकि जी रामायण का संकलन करके रामकथा को धरती पे लाए। तो ऐसे जहां भी आध्यात्मिकता का और भक्ति उसमें विशेष रूप से प्रमाणित रूप से प्रस्तुत है, उस सब में नारद जी का अति अधिक सहयोग रहा है। नारद आज भी चरणजीवी है, चिरजीवी है। आज भी नारद बद्रिक आश्रम में भगवान नारायण की 6 महीने सेवा करते हैं, जहां जब मानव की सेवा बंद हो जाती है तो नारद नित्य हैं, भगवान के परिकर हैं। 5 रातें भगवान नारायण ने साक्षात नर नारायण ने नारद को उपदेश दिया, पूजा पद्धति का, भक्ति का, उसको नारद पंचरात्रा विधि कहते हैं। और नारद का भक्ति सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर अपने स्कान में अनुवाद और तात्पर्य के साथ उपलब्ध है। वो नारद जी कहते हैं, ऐसे उन भक्ति वेदांतों की कृपा से मुझे परम पुरुष भगवान कृष्ण की कृपा से दिव्य ज्ञान जो वेदों के में है, स्वनिगमम, निगम वेद को कहते हैं। निगम का अर्थ होता है जहां तक पहुंचना मुश्किल हो। गम का मतलब पहुंचना, न का मतलब नहीं। जैसे नारियल का पेड़ है तो हर एक आदमी ऊपर चढ़ के नहीं उतार सकता है, जो ही चढ़ने का विधि जानता है वही उतार सकता है। तो ऐसे वेद के अंदर जो विशेष रूप से भक्ति है उसको केवल तत्वदृष्टि महात्मा ही उसको निकाल सकते हैं उससे। तो वेदों के अंदर जो विशेष रूप से प्रभुपाद लिखा है, स्वनिगमम का मतलब है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ द वेदर्स इन रेस्पेक्ट टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, राधा के भाव में कृष्ण, उन्होंने रूप गोस्वामी को वेदों के अंदर से भक्ति को विशेष रूप से प्रकाशित करके और उसको स्थापित करने का आदेश दिया था। तो ये स्वनिगमम का मतलब है वेदों में जो भक्ति है, भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान विष्णु की जो भक्ति है, उसको नारद जी कहते हैं मेरे को वो प्राप्त हुई। और फिर मुझे भगवान के दिव्य अवेत मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम, और उसके बाद मुझे ऐश्वर्य ज्ञान भगवान का प्राप्त हुआ। तो वेदों में तो उपासना है और फिर ऐश्वर्य ज्ञान भगवान का श्री कृष्ण बलराम की। वेदों का ऐश्वर्य ज्ञान का मतलब है भगवान, जैसे कृष्ण लीला में भगवान का द्वारका की लीला ऐश्वर्य लीला है। ऐश्वर्य लीला के अंदर भगवान के जो जैसे वैकुंठ ऐश्वर्य लीला है भगवान की, जहां भगवान वैकुंठ नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ भगवान की ऐश्वर्य लीला है, जहां भगवान 56 भोग से पूजे जाते हैं। और हमारे मंदिरों में भी भगवान राधा कृष्ण की उपासना करते हैं या कृष्ण बलराम की उपासना करते हैं, फिर भी पूजा की पद्धति हमारी लक्ष्मी नारायण की होती है, क्योंकि ऐश्वर्य की पूजा करते हैं। जैसे हमारे आचार्य रूप गोस्वामी आदि, भूगर लोकनाथ गोस्वामी आदि भगवान की पूजा बहुत माधुर्य भाव में करते थे, जो स्वयं के पास था वही अर्पण करते थे, लेकिन फिर भी लोगों के प्रचार की दृष्टि से भगवान की भव्य पूजा करना, बड़े मंदिर बनाना, ये पद्धति आई। तो नारद को ऐश्वर्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ, उस ऐश्वर्य ज्ञान के अंतर्गत भगवान की पूजा की पद्धति नारद ने स्थापित की। और फिर कहते हैं स्वस्मिन् भावम् च केशवः, और भगवान श्री कृष्ण का भावम, भाव जब भाव आता है कृष्ण भावना, भाव का मतलब प्रेममय सेवा। स्वस्मिन् भगवान स्वयं साक्षात श्री कृष्ण की प्रेम से सेवा करना, वो भी मुझे प्राप्त हुआ। तो पहले वेदों का गुप्त ज्ञान भगवान के विषय में, फिर भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, और फिर भगवान की भक्ति, ये तीनों मुझे प्राप्त हुए, ये नारद कह रहे हैं। श्रुतियों पर लिखते हैं कम्युन विद द लॉर्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द होल स्पिरिट ऑफ श्री कृष्ण। दिव्य ज्ञान के द्वारा जो भगवान के साथ एकत्व स्थापित होता है वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, और भगवत नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त करना ये परफेक्ट मेथड है। बाय सच प्योर कॉन्टेक्ट विद लॉर्ड विदाउट ऑफेंस ऑफ मटेरियल कंसेप्शन नंबरिंग 10, कौन सा 10वां ऑफेंस है नाम अपराध में? दसवां नाम अपराध कौन सा है? 10 जो 10 नाम अपराध है उनसे बचकर, ऑल 10 ही नाम अपराधों से बचते हुए, द डिवोटी कैन राइज अबव द मटेरियल प्लेन टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर इंक्लूडिंग लॉर्ड्स एग्जिस्टेंस इन द ट्रांसेंडेंटल रियल। तो यहां हमारे लिए सीधी सी शिक्षा है कि सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जपने से, only by chanting Hare Krishna mantra without offenses, अंदर से चेतो दर्पण मार्जन होने के बाद, हृदय की शुद्धि होने के बाद, भगवान के जो दिव्य ज्ञान है, भगवान का जो दिव्य नाम रूप गुण आदि है, जो भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः, वो तत्व से भगवान के जन्म को और लीला को समझने के लिए हमारा हृदय तैयार होता है। और उस ये काम कौन करेगा? हमको ये हमारे हृदय को तैयार करे जिसमें भगवान की नाम लीला गुण प्रकट हो, ये काम कौन करेगा? ये काम ओरिजिनली बलराम जी का है। बलराम जी सेव्य भगवान है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण की सेवा करना हमारा स्वरूप है, लेकिन हमको कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए ये कौन सिखाएगा? इस सिद्धांत को सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पहले बलराम जी प्रकट होते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए वो हमको शिक्षा देते हैं। पांचों रसों में भगवान की सेवा बलराम जी करते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। वैसे गोलोक में तो शांत रस है नहीं, लेस मात्र कम है, लेकिन फिर भी जो भगवान कृष्ण की सेवा में सामग्री लगती है, पूजा की सामग्री से लेके उनका बिस्तर से लेके सब चीजें जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन या विस्तार है। तो शांत रस में बलराम अपने आप को विस्तारित करके भगवान श्री कृष्ण के सारे सेवा के पैराफर्नलिया जो है वो बन जाते हैं, पूरा गोलोक धाम बन जाते हैं। ये शांत रस में बलराम जी की भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। दास्य रस में विशेष रूप से थोड़े दिन पहले हम पढ़ रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि वैसे बलराम जी बड़े भाई हैं लेकिन उम्र में इतना बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए सख्य रस में तो सारी बाल लीलाएं वृंदावन में कृष्ण और बलराम की तो फ्रेंडली रिलेशन में होती हैं। लेकिन फिर भी जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी ने एक साल के लिए बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा लिया और कृष्ण जब ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, तो उस समय बलराम जी ने जब देखा तो आश्चर्य हुआ कि ये मेरे प्रभु की लीला है। तो दास्य भाव बलराम में आ गया कि मेरे प्रभु की लीला है। तो ऐसे हम्बुलनेस के कारण वात्सल्य भाव में भी दास भाव आता है, सखा भाव में भी दास भाव आता है। और जब खेलने जाते थे कृष्ण बलराम वन में, तो कृष्ण जब खेल के थक जाते थे तो प्रायः बलराम जी कभी उसके चरण दबाने लगते थे। तो ये सखा भाव में दास्य भाव का जो है वो प्रकट्य हो जाता है। और वैसे सब भावों में दास्य भाव रहता ही है। फिर गोपियों का माधुर्य भाव है, फिर भी गोपियां कहती हैं हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी तुच्छ सेवक हैं, तो ये दास्य भाव है। नंद बाबा ने उद्धव को संदेश दिया कि हम कृष्ण के चरणों का ध्यान करते रहे हमारे मन से, ये हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं। तो नंद बाबा के चरणों का तो सेवा कृष्ण करता था, तो ये उल्टा कैसे बोला? उल्टा इसलिए बोला कि दैन्य भाव जब आ जाता है कृष्ण की जुदाई में, जब कृष्ण से भक्त विप्रलंबा भाव में होता है, दूरी होती है फिजिकल, तो उसको अपना अस्तित्व, अपना भाव कि मैं इसका पिता माता हूं, ये भूल जाता है और बहुत हम्बुल दैन्य भाव में वो अपने आप को दास भाव में स्थापित कर लेता है। तो ऐसे बलराम जी में दास्य भाव है और सखा भाव तो नेचुरली बलराम जी का सारा सखा भाव का तो लीला है। वात्सल्य भाव बलराम जी का जब माँ यशोदा कृष्ण का श्रृंगार करती है तो बलराम जी उस वक्त उसमें सहायता करते हैं और हमेशा बलराम जी कृष्ण का रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो रक्षा का भाव माता पिता का भाव है। तो ये वात्सल्य भाव बलराम में तो है ही, मधुर्य भाव बलराम में कहां है? कृष्ण की माधुर्य लीला में बलराम अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में एक्सपेंड करते हैं। अनंग मंजरी जो राधा रानी की बहन है वो बलराम का एक्सपेंशन है। तो बलराम भगवान की माधुर्य सेवा भी अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी के सहयोग से करते हैं। तो पांच ही रसों में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। तो इसका मतलब भक्त पांच रसों में भगवान के साथ सेवा में जुड़े हुए हैं। ये प्रभुपाद जी के भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में है कि पांच रस होते हैं और सारे जीव किसी न किसी एक रस में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी रस में कृष्ण की सेवा करनी है तो वो सेवा हमको सिखाएगा कौन? भगवान ही आके सिखाएगा। जैसे भक्ति कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करो, और कृष्ण भगवान ही सोचने लगे कि मैं कह के आया हूं भाव मत भक्तो, लेकिन मैंने सिखाया तो नहीं है भक्ति कैसे करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बन के भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखाने आए। तो ऐसे भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सिखाने के लिए भगवान का पहला विस्तार, फर्स्ट एक्सपेंशन, बलराम जी प्रकट होते हैं, जो सेव्य भगवान है, जो भगवान की सेवा में संतुष्ट होते हैं, और वो हमको भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए वो सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं, यहां जो हम पढ़ रहे हैं कैसे सिखाते हैं, गुरु के माध्यम से। हम रोज पढ़ते हैं चतुर्विधा भगवता अना श्री विघ्रहार नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर, ये कौन सिखाता है, गुरु की इच्छा क्या है कि भक्त भगवान की श्रृंगार करे, पूजा करे, भोजन भोग लगाए भगवान को, राधा कृष्ण की निकुज में सेवा करे, तो ये सब गुरु सिखाता है। तो ये गुरु के अंदर जब बलराम जी के शक्ति का बल का आवेश होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेदों में उपनिषदों में एक मंत्र है कि आत्मा न लभ्य बलहीने न, भगवान जिसके पास शक्ति नहीं है उसको प्राप्त नहीं होते। तो यहां बल का अर्थ है जिसके ऊपर बलराम की कृपा नहीं होती है वो भगवान को जान नहीं सकता है, भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। और बलराम नित्यानंद एक ही है, तो बलराम की नित्यानंद की कृपा के बगैर कृष्ण सेवा मिलना, चैतन्य महाप्रभु की सेवा मिलना संभव नहीं है। तो जितने भी गुरु, जो भी गुरु है, वो पुरुष गुरु, कोई आदमी नहीं, शकिल नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है गुरु एक है। नाम अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकते हैं, उसकी शक्लें अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर जो आवेश है वो बलराम जी की शक्ति का है, जो गुरु तत्व है आदि बलराम जी, वो जिसके ऊपर बल का आवेश करता है वो गुरु का सेवा कर, गुरु के रूप में सेवा करता है। तो गुरु तत्व अपने आप में बलराम जी के बल का प्रकाश है। तो यहां ये जो वेदों के अंदर रहस्य है, भगवान के नाम जपने से, भगवान के गुण लीला आदि का जो हमारा हृदय में प्रकाशित होंगे, वो कब होंगे, जब गुरु जिसके ऊपर बलराम जी की शक्ति का प्रकाश हुआ है, जिसके बलराम जी की शक्ति ने का आविर्भाव हुआ है जिसके ऊपर, वो ये कार्य करेगा। लॉर्ड रिवील्स हिज आइडेंटिटी ग्रेजुअली टू वन हु हैज अनफिल्चिंग फेथ बोथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर इन द लॉर्ड। ये पद्म पुराण का श्लोक है जिसका गुरु और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वेदों के सारे रहस्य और भगवान के ग्रेजुअली, भगवान का पहले वेदों में वर्णित ज्ञान, फिर ऐश्वर्य ज्ञान, फिर भक्तिमय सेवा का ज्ञान आस्ते 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 प्रकट होगा। तो कब होगा, जब अनफिल्चिंग फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द लॉर्ड, स्पिरिचुअल मास्टर एंड लॉर्ड। तो बलराम जी की कृपा पात्र जो भी व्यक्ति है उसका, उसकी कृपा से भगवान प्रकट होते हैं भक्त के हृदय में। आफ्टर दिस द डिवोटी इज एंडोर्ड विथ मिस्टिक ऑपुलेंस व्हिच आर 8 इन नंबर। अब ये है कि जब वेदों का रहस्य, वेदों का ज्ञान प्रकट होता है, भगवान की भक्ति होती है, तो भक्त के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है। यहां लिखा है मिस्टिक पावर, इसका मतलब सिद्धियां आ जाती हैं। तो सिद्धियां कोई बड़ी बात नहीं है भक्त के लिए, लेकिन भक्त सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता। ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, भागवत में लिखा है सिद्धियां ऋषभ देव के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हमें आप ग्रहण कीजिए। तो ऋषभ देव ने कहा नहीं, सिद्धियों को मैं इसलिए ग्रहण नहीं करूंगा कि सिद्धियों आने से अहंकार आ जाता है और आदमी भगवान की भक्ति करने से विचलित हो जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं प्रतिष्ठा सिद्धि मान सम्मान की इच्छा शुकर विष्ठा हाग के स्टूल के बराबर है भक्त के लिए। तो भक्तों के पास अपुलेंस तो होता है, भक्त चमत्कार दिखा सकते हैं। प्रभुपाद जी को जब किसी ने एयरपोर्ट पे पूछा कि सब महात्मा साधु गुरुजन आते हैं, उनके बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, कोई सोना बना के दिखा देता है, कोई ऐसे हाथ घुमा के कुछ भी कुछ चीज बाहर से ला के दिखा देते हैं। इसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। प्राप्ति सिद्धि का मतलब कहीं की कोई चीज भी आप लाना चाहो तो ला सकते हो। तो प्रभुपाद ने कहा मेरा चमत्कार ये है कि देखो ये जो पाश्चात्य देश में जन्म लिया, जिनको वैदिक संस्कृति का कुछ ज्ञान नहीं था, इनको मैंने वैष्णव बना दिया, ये मेरी सिद्धि है। तो सबसे बड़ा अपुलंस कृष्ण का क्या है? सबसे बड़ा जैसे दसवें अध्याय में कभी हम पढ़ते हैं, जब तो 40-42 से ज्यादा, वो ओवर 40 से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के अपुलंस का वर्णन है। उनको देखकर कृष्ण की याद आती है, उनको देखकर। अर्जुन का प्रश्न ये है कि हर समय हर जगह वो हम आपको कैसे याद कर सकें? भाई मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर दिखता है, लेकिन मंदिर से बाहर काम पे हो, रोड पे हो, बस में हो, जहाज में हो, फिर भी भगवान न भूले, उसके लिए हमको आप कोई रास्ता बताए। तो भगवान ने अपने अपुलंस बताए कि आप कहीं भी हो, पानी तो पीते हो ना, तो पानी पीते हो तो उसका रस मैं हूं ये देख लो। आप कहीं भी हो, दिन होगा, सूर्य देखते हो तो मेरे को सूर्य का रूप सम, मैं सूर्य का तेज मैं हूं। ऐसे जंगल में कहीं और शेर सामने आए तो समझना कि बन पशुओं में शेर मैं हूं, उससे डरना मत, और नहीं डरोगे तो शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये अनुभव की बातें हैं। साधु संत महात्मा वन में रहते हैं, उनका शेर कुछ नहीं बिगाड़ता। एक महात्मा अपना अनुभव बता रहे थे, वो मिलने गए किसी योगी से हिमालय में। योगी अपने ध्यान में बैठा था, महात्मा का स्वागत किया। महात्मा ने उससे पूछा कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करने, हम अपने आप को अपने शरीर में हवा का संचार कर लेते हैं, हवा शरीर हल्का जा होता है तो हम उड़ के चले जाते हैं, अथवा हम सांस अपना बंद करते हैं, गंगा के अंदर चले जाते हैं, जहां जाना होता है वहां जाके निकल जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी अर्ध कुंभ मेले में गए थे 72 में, तब कहने लगे कि आपको मालूम नहीं है कितने हिमालय से योगी इस गंगा की धारा में यहाँ आते हैं कुंभ मेले में विशेष रूप से स्नान करने के लिए। तो उस योगी ने उसी वक्त अपने अंदर हवा भरी और गुब्बारे की तरह, ये बैलून की तरह बड़ा हो गया, और एकदम अपने जहां गुफा में बैठा था वो छत की तरफ चला गया, उठ के ऊपर उड़ के चला गया। तो ये क्रिया है, जो योग क्रिया है, उससे अपने आप को लाइट कर दिया उसने, और फिर ऊपर उड़ा बोला, ऐसे हम जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। और फिर उसी के सामने उसने सब एयर वापस निकाल के फिर नीचे आके बैठ गया। तो बाहर निकला, जब वहां से जाने के लिए तो सामने शेर आया, तो वो डर के वापस आया, बोला महाराज शेर, महाराज बाहर निकला, शेर को कहा बेटा हट जाए यहां से। तो शेर चुप करके जैसे कुत्ता होता है घर में, ऐसे आके पास में बैठ गया। तो साधु संत महात्मा, जैसे प्रभुपाद को किसी ने कहा पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है भारत से और कल बम फेंकेगा, बोला बम के अंदर मैं देखूंगा कृष्ण आ रहा है हमारे पास, उस बम में भी मैं कृष्ण को देखूंगा, क्योंकि कोई चीज कृष्ण से अलग तो है नहीं, सब कुल उसी का आपलन से, अगर कृष्ण इस रूप में आना चाहता है तो मैं उस रूप में उसको स्वीकार कर लूंगा। तो यहां ये बात कही जा रही है कि भगवान का भक्त के अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, सारी सिद्धियां उसमें प्रकट होती हैं। ऐसे सामान्य रूप से तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन कुछ भक्त अपने अनुभव से बताते हैं। बॉम्बे के मंदिर बनने में ऑफिशियली प्रभुपाद जी का शिष्य नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वो प्रभुपाद का अनन्य भक्त था, सेठी पीएल सेठी। तो सेठी साहब रात रात में मंदिर का निर्माण किया था, जब म्यूनिसिपालिटी मंदिर को तोड़ रही थी, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का खुद रेवालर लेके अपने आदमी के साथ खड़ा था रात को। तो वो बीमार था, उसको डॉक्टरों ने यहां से पाइप वहां से पाइप सब लगाए हुए थे। वो खुद एक दिन बता रहा था, गुरुजी आए प्रभुपाद घर में आए कि आप चलो वहां काम नहीं करोगे तो काम रुक जाएगा। तो बोला ये देखो डॉक्टरों ने क्या किया, बोला प्रभुपाद ने सबसे निकाला, बोला कोई जरूरत नहीं है इसकी, और उसके बाद मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई, डॉक्टरों ने कहा। तो ये अब कभी प्रभुपाद का चमत्कार ऐसा हमने कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग अपने अनुभव से बताते हैं। वो कहते जिस दिन रात को परमिशन मिली कि बॉम्बे का मंदिर का निर्माण कर सकते हो, तो मैं और मेरी पत्नी रात को प्रभुपाद को ये समाचार सुनाने गए कि वो नायर ने मंदिर बनाने की परमिशन दे दी है। तो प्रभुपाद ने कहा फिर अभी से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहिए, तो अभी से जो है कुछ कलेक्शन शुरू करनी चाहिए। उसी वक्त वो जैसे किसी वक्त रात को आया, कैसे आया, तो उसी वक्त उसने अपनी पत्नी का सोने का वो कंगन था, बोला ये पहली कनेक्ट कलर मैं आपको दान ऐसे देता हूं। तो केवल उनके कहने से उनको सिद्धि, वाक सिद्धि होती है, एक जो कहते हैं वो हो जाते हैं। तो प्रभुपाद को बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने पूछा कि अभी तो 67 की बात है, अभी एक मंदिर तो एक भी नहीं बना था, एक दो सेंटर छोटे प्रचार के से। बोला आपके कितने मंदिर हैं, कितने आपके फॉलोअर्स है, बोला 100 temple 1000 फॉलोअर्स। कुछ भी नहीं था, बोला वेर आर दे, बोला टाइम इज सेपरेटिंग। तो टाइम इज सेपरेटिंग का मतलब अगर उन्होंने मुख से कह दिया तो इट हैपेंड, इट जस्ट मैनिफेस्टेड, अपने आप होने लगा। इतना सारा ऑपुलेंस, प्रभुपाद जी कभी स्वयं आश्चर्य से कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं ले गया, इतना सारा कैसे भगवान ने दे दिया। तो ये सिद्धि नहीं है अपने आप, इससे बड़े से बड़ी सिद्धि है। ये सिद्धि नहीं है कि इतनी सब चीजें ऐसे अपने आप मैनिफेस्ट करने लग जाएं, लोग अपने आप सेवा करने लग जाएं। तो ये भगवान की कृपा से भक्त के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है वो जो नहीं कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। ऐसे चेतन चरितमृत में वासुदेव दत्ता एक बार चेतन महाप्रभु को कहने लगे कि लोग दुनिया में बड़े दुखी हैं, पाप से ग्रस्त हैं, इनका उद्धार तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं इनको दुखी देख नहीं सकता हूं, आप एक कृपा कीजिए, कृष्ण को प्रार्थना कीजिए, इन सारों का पाप मेरे सर के ऊपर रख दें और इन सबको वैकुंठ भेज दें। तो महाप्रभु ने कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम साक्षात प्रहलाद हो वासुदेव, ऐसे सबका पाप लेने की तुमने क्षमता है, तुम कर सकते हो और तुम्हारा ये अच्छा भाव है, लेकिन कृष्ण कोई असमर्थ तो है नहीं कि सबका पाप तुम्हारे को देगा तब उनको उद्धार करेगा। अगर तुम चाहोगे तो एक पूरा लोक कृष्ण उद्धार कर देगा। कृष्ण के लिए एक लोक का उद्धार करना कौन सा, कृष्ण के लिए एक लोक ऐसे है जैसे किचन में किसी माता जी के लिए एक मस्टर्ड सीड है, एक मस्टर्ड सीड गिर जाएगा तो कोई परेशानी होती है घर में आपको, एक मस्टर्ड सीड नीचे गिर जाए कभी ढूंढता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक एक वो समुद्र के किनारे पे के एक रेती का दाना आपके कपड़े से ऐसे नीचे गिर गया तो आप उसको ढूंढते हो कि वेयर इज दैट सैंड व्हिच इज जस्ट फॉलन फ्रॉम माय क्लास, नहीं। तो कृष्ण के लिए एक लोक का उद्धार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मिलियन सब ऐसे ट्रिलियन सब लोक हैं, उसमें एक लोक उद्धार हो गया तो कृष्ण को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर महाप्रभु कहते हैं कृष्ण को और कोई काम नहीं है, कृष्ण और कोई नहीं कृत्य, भक्त वांछा पूरी करे, भक्त की इच्छा पूरी करने के अलावा कृष्ण का कोई और काम है ही नहीं। आप वासुदेव इच्छा करेंगे कि ये लोग का उद्धार हो जाए तो भगवान उनको भक्त बना देगा, जब वो भक्त बन जाएंगे तो उनका अपने आप उद्धार हो जाएगा। जब सिंपली यू डिजायर दैट दे बिकम डिवोटी, कृष्ण विल मेक देम वैष्णव एंड वैष्णव इज ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड। तो केवल भगवान के भक्त को इच्छा करनी होती है तो वो इच्छा भगवान पूरी करते। ये इसका इससे हमको ये सीखना चाहिए, हम इतने सालों से हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, सावधानी से मंत्र जपें और अच्छी इच्छा करें कि यहाँ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनना चाहिए, यहाँ बहुत सारे लोग भक्त बन जाएं, ये हमारे अंदर इच्छा भी आए तो भगवान उसको पूरी करेंगे। लेकिन हमारे अंदर ऐसी इच्छा आती नहीं है, हमारे अंदर इच्छा आती है कि हमारा घर कैसे चले तो उतना ही भगवान करता है, हमारी इच्छा इससे ज्यादा आती नहीं है कि हमारा काम कैसे चले। हमारी इच्छा हो कि हम दूसरों का कैसे उद्धार हो, बहुत बड़ा भव्य मंदिर कैसे बने, ऐसे यहाँ बहुत पूरा भाई एक गांव कृष्ण का आश्रम बन जाए, ऐसा संकल्प करोगे तो पूरा हो जाएगा। कृष्ण कैन डू दैट इफ यू डिजायर। कभी हमने कहा कि कलयुग के अंदर शास्त्रों के अंतर से कलयुग के अंदर ऐसे लिखा है कि जो आदमी जब तक पाप करता नहीं है कितना भी गलत सोचे तो उसको दंड नहीं मिलता है, जब पाप करेगा तभी दंड मिलेगा। अन्य युगों में पाप का सोचने के ऊपर भी दंड मिलता था कि तुमने ऐसे सोचा था इसलिए तुमको दंड दिया जाएगा, और अन्य युगों में जब तक कोई अच्छा काम करता नहीं था तब तक उसको फल नहीं मिलता था। कलयुग में अच्छा काम करो मत, केवल सोचो तो फल मिलेगा। लेकिन हमने कई बार कहा और हम खुद भी अच्छा सोचते ही नहीं है रोज, केवल सुबह उठ के कहें कि आज मैंने 10 गाय दान कर दी, आज 50 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, तो उसका फल मिलेगा। लेकिन हमसे ये कहना होता ही नहीं कि उठ के सुबह ये कहना चाहिए कि आज सुबह सुबह मैं 50 गाय दान कर देता हूँ, 50 ब्राह्मणों का भोजन कराता हूँ, 100 भगवद गीता वितरण करके आ जाऊंगा। ऐसा सोचोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। कलयुग में ये विशेषता है, लेकिन कोई नहीं सोचता, कोई सोचता नहीं। केवल इतना सोचे तो भी फल मिलेगा। तो यहां बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो भक्त अपराध रहित नाम का जप करता है, जिसका गुरु और कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, उसके अंदर ग्रेजुअली भगवान का सब ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान से लेके माधुर्य ज्ञान तक प्रकट होता है, और उसके अंदर सारे मिस्टिक अपुलेंसेज आ जाते हैं। एंड अबव ऑल द डिवोटी इज एक्सेप्टेड इन द कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एंड इज इंटरेस्टेड विद द स्पेसिफिक सर्विस ऑफ द लॉर्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। अब मिस्टिक सिद्धियों से भी ज्यादा है कि उसको भगवान के परिक्रों में, परिकर मतलब एसोसिएट भगवान के, उनमें उसको एंट्री मिल जाती है और उनको विशेष सेवा मिलती है भगवान की, गुरु की कृपा से। ऐसे जनरली हम जब शुद्ध भक्ति करेंगे एक स्तर के ऊपर, तो जब ये शरीर छूट जाएगा तो जहां जिस लोक में भगवान की लीला हो रही है वहां हमको दूसरा शरीर मिलेगा, उसको नित्य लीला कहते हैं। भगवान की लीला को नित्य लीला कहते हैं, और नित्य लीला भगवान की भौतिक जगत में होती है, और ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे भगवान के अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में भगवान, एक बार प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे और जन्माष्टमी आने वाली थी, बोला प्रभुपाद जी जन्माष्टमी तक रुकिए, ये सो एंड सो डेट को जन्माष्टमी है। प्रभुपाद के जन्माष्टमी एवरी डे जन्माष्टमी, कृष्ण इज अपियरिंग एवरी डे समवेयर। भक्त के लिए रोज जन्माष्टमी है, भगवान तो कहीं ना कहीं रोज प्रकट हो ही रहे हैं, और उससे भी ज्यादा भक्त के लिए जन्माष्टमी इसलिए है कि वो रोज भगवान को अपने हृदय में प्रकट करने का अभ्यास और प्रयास करता है। प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान का दर्शन, भगवान का जप करता है। असल में जन्माष्टमी की परिभाषा और भगवान के अपियरेंस का रहस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शब्दों में, भक्त को तब समझ में आता है जब भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते। जब हमारे अपने हृदय में भगवान की अनुभूति होगी, रियलाइजेशन होगी, तब हम समझ सकते हैं कि भगवान वासुदेव के हृदय में कैसे आए, देवकी के हृदय में कैसे आए। तो ये हर एक व्यक्ति को तब समझ में आएगा जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो प्रभुपाद का जन्माष्टमी तो रोज होती है, किसी न किसी के लोक में भगवान तो रोज अपीयर हो रहे हैं, और इतने असंख्य लोग, और कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला आज भी हो रही है। कहीं गौचरण लीला हो रही है, तो कहीं पूतना का उद्धार हो रहा है, कहीं कोई कोई कई लीलाएं कहीं रोज हो रही है कहीं ना कहीं। ये तो नित्य लीलाएं चलती रहती है। तो भक्त को ये शरीर छोड़ने के बाद सिद्ध देह की प्राप्ति होती है, जब वो सारे भौतिक बंधनों से अपने आप को मुक्त करते हैं, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रह जाती हृदय के अंदर। कृष्ण भक्त शांत निष्काम अतेव शांत, उसकी कोई कामना भौतिक भोग की नहीं रहती। तब शरीर छोड़ने के बाद जहां भगवान की लीला हो रही होती है वहां उसको जन्म मिलता है, और उस जन्म में उसको विशेष सेवा दी जाती है। उस भगवान की लीला में, भगवान की लीला में कोई एक विशेष सेवा, किसी को माला बनाने की सेवा है, किसी को दूध गर्म करने की सेवा है, किसी को कुंज साफ करने की सेवा है, जो भी कोई एक सेवा दी, उस सेवा को जो पहले करता है उसके असिस्टेंट के रूप में उस सेवा को वहां अभ्यास करके परफेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई ड्रामा हमको करना होता है तो कई दिन तक उसकी रिहर्सल करते रहते हैं, रिहर्सल करते हैं। जब उसमें परफेक्शन होती है तब स्टेज के ऊपर लाते हैं कि वहां कोई गलती ना हो। तो ऐसे जो भी हमारा भगवान की सेवा का भाव जो हमारा नेचुरल है वो गुरु की कृपा से जब प्रकट होता है तो नित्य लीला में वो सेवा करने को मिलती है। और जो वो सेवा उसमें पहले परफेक्ट है उसके अंडर में वो सेवा करनी पड़ती है। और जब उस सेवा में हमारी परफेक्शन हो जाती है तब हमको गोलोक धाम में वो सेवा नित्य करने का अवसर मिलता है। तो एक स्टेज से गुजरना पड़ता है, यू हैव टू गो थ्रू दी स्टेज ऑफ नित्य लीला, वहां ये रिहर्सल करके परफेक्ट करना है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि जब ये हमारे जप करते करते हृदय शुद्ध हो जाएगा, नाम अपराध से अपने आप को मुक्त कर देंगे। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भजन के रहस्य में और वृंदावन के भाव में भजन करने के लिए लिखते हैं कि जिन असुरों का बलराम जी ने वध किया, धेनकासुर का वध किया और प्रलंबासुर का वध किया ब्रज लीला में, ये दो अनर्थ हैं। धेनुकासुर इग्नोरेंस है, गधा है ना, गधे का मतलब ऐश, और जो भौतिक संसार में काम का भार उठा के घूमता है, इग्नोरेंस लाइक ऐश टेकिंग द लोड ऑफ द मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, धेनुकासुर है। और प्रलंबासुर काम वासना है। इस दुनिया में जो स्त्री पुरुषों का आपस में प्रेम का भाव है और जो इस प्रकार के काम वासना है वो प्रलंबासुर का जो है वो दोष है। वो तो गोपियों को लेके जा रहा था, प्रलंबासुर गोपियों को भगा के ले जा रहा था और जाके उसको पकड़ के लाया गया, हाँ, प्रलंबासुर। तो इन दो दोषों को भक्त को अपने प्रयास से दूर करना पड़ता है। ये जो दो दोष हैं, जो असुर बलराम जी ने जिन असुरों का वध किया है उनके जो दोष हैं, इग्नोरेंस का, भौतिक भार का और भौतिक कामनाओं का, भोग का, लस्ट का, ये दो भोग भक्त को अपने आप प्रयास करके नाश करने पड़ते हैं। इन भोगों से छूटने के लिए भक्त को प्रयास करना पड़ता है। और जब ये साफ हो जाते हैं, ये सातवें अध्याय में मेरे ख्याल में वर्णन है वो शिक्षा अष्टकम के ऊपर, तो जो आठ श्लोकों में है सातवें श्लोक तक इसका वर्णन है कि उस स्टेज पे कब आता है भक्त, जब ये दोष अंदर से स्वयं साफ करता है। तो ये गुरु की कृपा से, बलराम जी गुरु तत्व है, गुरु को वो शक्ति देते हैं, गुरु हमको हमारे ऊपर जब कृपा होती है तो फिर ये दोष हमको अपने आप, संसार के भार का दोष, अज्ञानता के कारण हम समझते हैं हम काम नहीं करेंगे तो दुनिया चलेगी नहीं, हम नहीं काम करेंगे तो दुनिया चलेगी नहीं, हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हम जब नहीं होते तब भी दुनिया चलती है, दुनिया बंद हो जाती है क्या? लोग कहते हैं कि जितने भी आदमी ग्रेव यार्ड में कब्र में पड़े हैं वो सब ये सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन अब भी दुनिया चल रही है। उनको कोई बोल गए तुम चले गए हो, दुनिया अच्छी तरह से चल रही है, उसमें कोई खराबी नहीं आई। तो हम समझते हैं कि हम नहीं काम करेंगे तो दुनिया बंद हो जाएगी, ये हमारा सोच है। और ऐसे लोग भी कहते तुम कुछ भी नहीं करते हो कैसे काम चलेगा, और हम कुछ भी नहीं करते तब भी काम चल रहे। ये बहुत बड़ा आश्चर्य, भक्त को पता लगता है एक स्टेज के ऊपर कि कुछ भी नहीं करने से भी काम चलता है। हमने आपको बताया था कभी सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवत और टेंथ कैंटो के सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद ने एक पर्पट लिखा है कि ऐसे हंड्रेड्स हमारे भक्त हैं जिनका कोई फिक्स कार्य नहीं है, कहीं भी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपुलेंटली दे आर मेंटेन और उनको कोई चीज की चिंता नहीं है। तो ये एक ये धेनकासुर वाला जो अपराध है
जो जो दोष है अज्ञानता के कारण हम समझते हैं कि ये सारा भार दुनिया का हमको उठाना है, इससे हमको अपने आप मुक्त करना है, और नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, ये अनुभव करने के लिए। ये तो तब होता है जब भगवान कैसी कृपा करके ये शिक्षा हमारे जीवन में अपने आप अनुभव में आए, तो हमारे को एक स्टेज दूसरी आएगी। पहले तो सिद्धियां आएंगी, और सिद्धियों को भी भगवान की सेवा में अगर लगाया, अपने भोग में नहीं अगर उसको लिया, तो फिर भगवान के भक्तों के एंटोरेज, जिसको कहा जाता है भगवान के परिकरों में, पार्षदों में हमारी गैंट्री हो जाएगी। ए प्योर डिवोटी इज मोर इंटरेस्टेड इन सर्विंग द लॉर्ड देन इन शोइंग एन एग्जीबिशन ऑफ मिस्टिक पावर्स डार्मा टू नेम। अब प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान की नित्य सेवा में ज्यादा आनंद लेता है, अपना वैभव दिखाने में उसको कोई ज्यादा रुचि नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भक्त चमत्कार दिखा सकता है, दिखाना चाहे तो, लेकिन चमत्कार दिखाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको भगवान की सेवा में इंटरेस्ट है। भक्त चमत्कार दिखा सकता है, लेकिन चमत्कार दिखाने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके अंदर सिद्धियां तो हैं, लेकिन वो सिद्धियों का प्रयोग नहीं करता है। कोई ऑपुलेंस, कोई चीज भगवान की कृपा से मिले, माधवेंद्रपुरी के जीवनी में भगवान ने दो बार तो दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट। पहले तो साक्षात आके बताया, मुझे यहां से निकालो, सामने आके दूध का लोटा लेके आए। फिर उसी ने स्वप्न में कहा कि मुझे यहां से निकालो, फिर स्वप्न के कहा कि मेरे को चंदन लाके दो मलाया का। तो जब माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ मंदिर में गए, तो रात को गोपीनाथ ने जब उनके लिए खीर चुराई, और आधी रात को पुजारी खीर देने आया जहां वो सोया हुआ था किसी धर्मशाला के बाहर, तो रात रात को वहां से माधवेंद्रपुरी भाग गए। क्यों भाग गए? बोला सुबह सबको पता लगेगा कि भगवान ने चोरी किया खीर अपने भक्त के लिए, तो सब मेरे को देखने आएंगे किसके लिए भगवान ने चोरी किया। तो यहां कल इतना सारा मेरे को ऑपुलेंस मिलेगा, लोग मेरा पूजा करेंगे आके, ये महाराज के लिए भगवान ने खीर का चोरी किया, तो ये भगवान के यहां मेरा अपराध हो जाएगा और मेरी भगवान की सेवा में रुकावट पड़ जाएगी। मैं तो चंदन लेने के लिए निकला था, और मैं अपनी पूजा कराने के लिए यहां बैठूं और लोग मेरे को चंदन लगाएंगे तो सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो रात को वहां से निकल गए, और नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति को ऐसा चमत्कार होता तो वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू देता कि देखो भगवान ने मेरे लिए ये खीर का लोटा है, इस लोटे को दिखाता, और पता नहीं कितनी पब्लिसिटी उसकी करता। लेकिन तो पब्लिसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के चंदन लाने में इंटरेस्ट था, भगवान की सेवा में इंटरेस्ट था। और जब जगन्नाथपुरी में गए, और ये बात तो वहां भी पहुंच गई, वहां भी सबने कहा कि इनके लिए भगवान ने खीर चोरी की थी, उनका नाम ही गोपीनाथ का खीर चोर गोपीनाथ हो गया। और वहां क्योंकि भगवान की सेवा की जरूरत थी, तो वहां उस ऑपुलेंस को स्वीकार किया, और वहां से उसी ऑपुलेंस के कारण उसको पुजारियों ने महाराज से परमिशन लेके चंदन भी दिया, कैम्फर भी दिया, और फिर कुछ सैनिक भी दिए रक्षा करने के लिए, क्योंकि चंदन उठा के जाना बहुत मुश्किल है। और आज भी बेंगलोर में चंदन मैसूर में होता है, और आज भी बेंगलोर में चंदन ट्रेन में ले जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। जैसे हीरोइन पकड़ने का जितना जुर्म है, उतना चंदन उठाने का जुर्म है। आपको किसी अथोराइज साथ से लेना पड़ेगा, और वो रसीद साथ में होगी तो ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा सकते हो। आज भी चंदन के ऊपर गवर्नमेंट का इतना रिस्ट्रिक्शन है कि चंदन ऐसे कोई उठा के जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है कि ये इलीगल ले जा रहा है। 2 साल पहले चंदन यात्रा के लिए राधारमण के लिए भक्त 1 किलो चंदन लिया था, तो 15-16 हजार रुपए का, 15,000 रुपीज का किलो है, इतनी लकड़ी होती है 15,000 रुपीज की। और चंदन के ऐसे जंगल हैं वहां, और कौन कह रहा था कि मायापुर में भगवान पंचतत्व के लिए चंदन की जब जरूरत थी तो वो क्या है, जो फॉरेस्ट वाले हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है तो वो चंदन अपने आप वहाँ पहुँचा देते हैं। तो दूसरा भी काम होता है, लेकिन ऑफिशियली आपको चंदन ले जाना है तो रसीद होनी चाहिए साथ कि आपने अथोराइज गवर्नमेंट शॉप से खरीदा। तो चंदन वहां कहा कि आपके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चोरी की। जी हाँ, उसी गोपीनाथ ने मुझे कहा है कि चंदन चाहिए। तो वहां उन्होंने अपने अपीलेंस को स्वीकार किया क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जरूरत था। और वहां रेमुणा में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वहां अपनी प्रसन्नता होती, वहां चंदन तो मिलने वाला था नहीं, वहां तो चंदन लगने वाला था। तो चंदन लगने में खुश नहीं है भक्त, चंदन भगवान को लगाने में खुश है। प्रायः लोग अपने को चंदन लगाने में खुश होते हैं, भगवान का चंदन भूल जाता है। तो यहाँ अगर माधवेंद्रपुरी अपने प्रसन्नता के लिए बैठ जाते हैं तो फिर भगवान की सेवा में रुकावट पड़ जाती। वहां तो कहते हैं महाराज आप यहाँ के अभी पुजारी बन जाओ, आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं इस मंदिर का, आप यहीं रहिए, ये सब गाड़ियां वाड़ियां सब आपकी सेवा में, ये सब पुजारी। फिर तो बेचारा चंदन कहाँ ले जाता भगवान के लिए, चंदन तो भूल ही जाता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्त अपने मिस्टिक पावर को दिखाने में उनको कोई रुचि नहीं है। श्री नारद हैज एक्सप्लेन ऑल दिस फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वन कैन ऑब्टेन ऑल दी फैसिलिटीज व्हिच नारद ऑब्टेन बाय परफेक्टिंग द चैंटिंग प्रोसेस ऑफ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड। प्रभुपाद जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि जो नारद को केवल भगवत नाम उच्चारण से इतने सारा सिद्धियां मिली हैं, दिव्य शरीर मिला है, दिव्य ज्ञान मिला है, ये किसी को भी कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। जो भगवत नाम जपने का साधन है उससे ये प्राप्त कर सकता है। नारद ने किया है तो दूसरे भी कर सकते हैं। नारद तो दासी पुत्र के स्तर से किया है, आप तो कम से कम उससे अच्छी स्थिति में हो, आप यहां से ये करो तो कोई मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। इसका भाव ये है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी नाम स्मरण के प्रभाव से जो नारद को मिला था, इस प्रकार से स्वयं प्रभुपाद पूरे विश्व के अंदर ऐसे घूम रहे थे। जबकि पहले टिकट के लिए प्रभुपाद कई महीने, वो भी पानी के जहाज के टिकट के लिए बॉम्बे में मुरारजी के वहां बैठे और कितनी परेशानी उठानी पड़ी, और उसके बाद एक जहाज से उतर के दूसरे जहाज में चढ़ते थे और इतने सारा भ्रमण किया। तो ये प्रभुपाद का अपना अनुभव है कि केवल भगवान के नाम जपने से, इस तरीके से अपने लिए कोई स्वयं अपनी प्रशंसा का भाव न हो और भगवान के प्रचार का भाव हो तो भगवान सारी सुविधाएं दे देता है, कोई उसको मुश्किल नहीं। नारद की विशेषता क्या है कि नारद ने अपना घर भी नहीं बनाया, घर नहीं, घरवाली नहीं, तो घर की जरूरत नहीं, घर की चीज की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है तो उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है। जब हम छोटा भी अपने लिए रखने लगते हैं तब ऊपर से आना बंद हो जाता है। प्रभुपाद जी कितने मंदिर बनाए, किसी मंदिर को अपने नाम में नहीं रखा, सब भगवान के। प्रभुपाद जी कृष्ण इज गिविंग मी अनलिमिटेड बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ए पेनी फॉर माय पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं अपने लिए कुछ नहीं रखता हूं, सब कृष्ण के नाम में लगा देता हूं, इसलिए अनलिमिटेड आ रहा है। तो नारद के पास कुछ है ही नहीं अपना, भाई नारद कुछ किसी को दिखाए, अपना तो कुछ भी नहीं है, वही वेणु है जो भगवान ने दी है और वही दो कपड़े का, एक कपड़े का जोड़ा है जो पहन के घूमता है। अगर ऐसी स्थिति में कोई प्रचार करना चाहे तो कुछ भी उसको मिलना असंभव नहीं है, ही कैन गेट एवरीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब हमारा अपना उसमें पार्टनरशिप भगवान से हो जाती है तो लिमिटेड आने लगता है, देन इट कम्स लिमिटेड। तो यहां प्रभुपाद जी ये अनुभव बताते हैं जो नारद को मिला वो सब सबके लिए उपलब्ध है, एवरीबडी इज कैन हैव दैट थ्रू चैंटिंग प्रोसेस। There is no bar for chanting the transcendental sound by anyone, provided it is received through the Narad's representative, coming down by the chain of disciple succession or parampara system. लेकिन वो नाम जप नारद के परंपरा में किसी को मिले तो वैसे सारे ही परंपराएं मोर और लेस नारद सब परंपराओं में अपने आप में प्रसिद्ध है। तो नारद के भक्तों के द्वारा नारद की परंपरा में किसी को भगवत नाम जपने के मिले और वो नाम जप अपराध रहित करे तो समय के साथ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप भगवान के विषय में उसको ज्ञान, भगवान का ज्ञान दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान, माधुर्य प्रेम का ज्ञान, भगवान के ऑपुलेंसेस, भगवान की ओर से सिद्धियां, और फिर भगवान के नित्य परिकर होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। हम सोचे थे बलराम जी का, चलो कुछ बीच में बलराम जी के तो वर्णन आया ही, दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में ही परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव महाराज, आपने बलराम जी को देवकी के पुत्रों में भी गिनाया, सातों पुत्र और रोहिणी के पुत्र के रूप में भी गिनाया, तो एक ही बेटा दो माओं का कैसे हो सकता है बगैर शरीर के परिवर्तन की? जब शरीर ही परिवर्तन नहीं हुआ तो ना दो माताओं का एक बेटा कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पूछा है। तो उस प्रश्न के उत्तर में फिर दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सुना जाएगा कि छह गर्भों के कंस के मारने के बाद सातवां बलराम जी देवकी के उदर में आया और देवकी के उदर को तैयार किया भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आसन, उसका वेग, उसका स्थान, वो सब बलराम जी प्राप्त ही विस्तारित होते हैं। तो देवकी के गर्भ में बलराम जी का आना हुआ और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं योग माया को कि मेरा शब्द यूज करते हैं, मेरा दो शब्द बहुत सुंदर शब्द है, मेरा अंश है और धर्म, क्या शब्द है एग्जैक्टली, मामेक अंशम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हाँ, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से, देवक्या जठरे गर्भम, जो देवकी के उदर में गर्भ है, शेष आख्याम, उसको शेष कहते हैं, वो शेष क्या है, धाम मामकम, वो मेरा धाम है। तो भगवान का जो धाम है पूरा गोलोक, वो शेष अपने आप को विस्तार करके बनाते हैं, भगवान का बिस्तर, भगवान का बैठने का स्थान, भगवान का पूजा की सब चीजें, ये श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं देवी को आवाहन करके के देव। हाँ, पहले देवकी को बुलाया और जब देवी आई, ये श्लोक ऐसे, भगवान अपि विश्ववादमा विश्व आत्मा विदित्वा कंसजम भयम यदुनाम निज नाथा नाम योग मायाम समाधिशात टू प्रोटेक्ट यदुस, क्योंकि यदुवंशी कंस के कारण बहुत भयभीत थे, मथुरा को छोड़ के अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, तो उनको भय से मुक्त करने के लिए पर्सनालिटी ऑफ गार्डेड विश्व आत्मा, भगवान तो विश्व आत्मा है, सबका नाथ है, जगन्नाथ है, क्या शब्द है, जगन निज नाथ, तो जगन्नाथ है भगवान, फिर भी यदु का नाथ है, उसको यदुपैति कहते हैं, इसलिए उन्होंने योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाकर क्या कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, आप ब्रज में जाओ, क्योंकि उस वक्त रोहिणी ब्रज में रह रही थी और वसुदेव की दूसरी पत्नियां भी ब्रज में नंद बाबा के वहां रह रही थी और कुछ लोग उधर रह रहे थे, कुछ तो और जगहों में चले गए थे, तो गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, ब्रज कैसा है, जहां गौए हैं, जहां गोप है और बहुत सुंदर है ब्रज, रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, और वसुदेव की पत्नी रोहिणी वहां नंद के गोकुल में रहती है, अन्यास्य कंस संविघ्ना विवरेशो वसन्ति, वहां द लॉर्ड ऑर्डर योग माया ओ माय पोटेंसी हु आर वर्शिपेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड एंड हुज नेचर इज टू बेस्ट ऑफ गुड फॉर्चून अपॉन ऑल लिविंग एंटिटीज गो टू ब्रज, where there live my cowherd men and their wives, in that very beautiful land where many cows reside, Rohini, the wife of Vasudeva, is living at the home of Nanda Maharaj. Otherwise, the wives of Vasudeva are also living there, incognito, because of fear of Kansa. Please go there. वहां जाके उनको भय से मुक्त करो. तो कैसे वो भय से मुक्त होंगे? बलराम जी वहां प्रकट होंगे तो वो भय से मुक्त हो जाएंगे. रोहिणी के वहां बलराम जी को प्रकट करो. तो उस विश्वनाथ चक्र देवकी अजठरे गर्भम, भगवान तब कहते हैं, सुनो देवी, देवकी के उदर में जो गर्भ है उसको शेष कहते हैं, वो मेरा धाम है. तत् संकृष्य रोहिण्याम उदरे सनिवेश्य, उसको आप वहां से आकर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित करो. चक्रवर्ती श्याम कहते धाम मामिका मीन्स बलदेव इज माय अंश प्लेनरी पोर्शन एंड शेष इज हिज पोर्शन. दिस इज इन वर्स इन श्रीमद् भागवत में बताया, राम रामो महाभावो न जाने तव विक्रमम यस्याकंसेन विद्रुत जगति जगत पते. यमुना देवी सेड राम राम ओ माइटी आई एम वन, आई नो नथिंग ऑफ यूर प्रोवेस, विद ए सिंगल पोर्शन ऑफ यूर सेल्फ यू शुड यू होल्ड अप द अर्थ ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. असल में आप अंदाजा लगाइए कि अनंत शेष के एक एक हुड के ऊपर एक ब्रह्मांड है. वो तो रुई का जो थोड़ा सा क्या कहा जाए, रुई का जिस लेस मात्र रुई के बराबर एक ब्रह्मांड को शेष धारण करते हैं, तो कितना वो शक्तिशाली है. तो वो शेष बलराम जी का अंश है. बलराम जी से वो शेष विस्तार है बलराम जी का. और जितने अवतार आते हैं वो तो दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से आते हैं, महासंकर्षण से. उस संकर्षण का भी आदि कारण बलराम जी है. और प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आई हैव रिक्वेस्टेड बलराम टू गो टू देवकी द वूम टू प्रिपेयर फॉर माय अपीयरेंस, सो प्लीज टेक दैट. दो रोहिणी इज द एटर्नल मदर ऑफ बलराम बिकॉज ऑफ माय कृष्णाज रिक्वेस्ट. रोहिणी बलराम की नित्य माता है. इसका मतलब गोलोक धाम में रोहिणी बलराम की माता नित्य है. लेकिन मैंने बलराम को, कृष्ण कहते हैं, मैंने बलराम को रिक्वेस्ट किया है. ही अपियर्ड इन द देवकी मोम फर्स्ट आफ्टर एस्टेब्लिशिंग शेष हिज अंश देयर फॉर माय बेड एंड सीट. अब बलराम वहां क्या करेंगे? अपने अंश शेष को वहां रखेंगे, क्योंकि वो मेरा बेड है, वो मेरी. तो मैं तो वोम में नहीं जाऊंगा देवकी के, मैं तो शेष छैया के ऊपर जाके सहन करूंगा. तो वो उस शेष को वहां रख के जाएगा. और यहां अगर हम याद करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को जब वसुदेव ले जा रहा है और ऊपर से बरसात हो रही है तो शेष ऊपर से छाया कर रहा है. वो शेष कहां से आया? वो शेष बलराम जी यहां स्थापित करके गए. वो कृष्ण के साथ साथ जा रहा है. जैसे यहां हम गुरुजन जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पहले उनका आसन पहले सीट पहले जाती है ताकि वो सीट रखेंगे तब उसके ऊपर बैठेंगे ना. तो आसन चादर ये सब पहले जाता है, उनका गिलास पानी पीने का, उनका लोटा, उनका थैला सब जाता है साथ में. तो जब इस दुनिया में भी किसी बड़े आदमी के लिए उसका सब सामान साथ जाता है, तो भगवान जब जाते हैं तो उसका सारा सामान पहले से योग माया के द्वारा साथ जाता है. तो बलराम जी को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो शेष को वहां स्थापित करे, क्योंकि वो मेरा बेड है और मेरी सीट है. ही डिजायर टू गो टू द होम ऑफ हिज ओन मदर, और उसकी इच्छा थी कि वो ये काम करके अपनी माता के उदर में जाएगा. इसलिए देवी उसको आप ले जाओ. हाउ इज इट पॉसिबल दैट सिक्स मटेरियल चिल्ड्रन कुड अपीयर फर्स्ट इन द होम ऑफ देवकी हु इज इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड. Just as the material universe exists within the Supreme Lord, out, but do not contaminate the Lord, six children could exist within Devaki without contaminating her. This is proven in Gita too. ये एक प्रश्न उठता है कि देवकी देव रूपेण, देवकी तो चिदानंदमय है, तो उसके गर्भ में छह असुर कैसे रहे? How the six षड गर्भ असुरा, षड गर्भ असुरा, six children of Marichi, they were cursed by Brahma to become demons. तो वो देवकी के गर्भ में कैसे रहे? तो देवकी के गर्भ में असुर रहे, उसी गर्भ में बलराम आया, उसी गर्भ में कृष्ण आया. हाउ इज दैट? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास कहते हैं कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं संसार में हूं और संसार में नहीं हूं. तो जब भगवान ऐसे कर सकते हैं, देवकी उसी चीज की बनी हुई है, तो उसके अंदर वो छठ गर्भ आए और नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? शी इज नॉट कंटामिनेटेड बाय दो छठ गर्भ बिकॉज शी इज ट्रांसेंडेंटल. दे आर डिफरेंट. दे ओनली केम देयर बिकॉज दे हैव द कर्स दैट दे शुड बी किल्ड बाय देयर ओन फादर. एंड कंस काल नेमी वॉज द फादर ऑफ दीज सिक्स छठ गर्भ. सो कंस was the father of these six children and he killed each one. That was the curse. कि अपने पिता के हाथों मारे जाओगे. You all will be killed by your own father. So कंस काल नेमी था जिसने षड गर्भों का, जो मरीचि के पुत्र थे, उनको मारा. और वो देवकी के गर्भ से सिर्फ उधार उनका हुआ उसके कारण. वो कैसे मुक्त होंगे शराब से? द्वारका लीला में एक दिन देवकी कहेगी कृष्ण बलराम, आपने सांदीपनी मणि गुरु का कई जन्म पहले, कई साल पहले बच्चा मर गया था, उसको वापस लेके दिया. मैंने मेरे छह बच्चों को देखा नहीं है. आई हैव नॉट सीन माई सिक्स चिल्ड्रेन. कांट यू ब्रिंग दोस? तो कृष्ण बलराम सूतल लोक में बलि महाराज के पास गए, उसका स्वागत हुआ. बलि महाराज ने कहा, मैं सेवा के बोला, ये छह बच्चे जो आपके पास है ये मेरी माँ के हैं, इनको मैं ले जाऊंगा. तो वो छह बच्चे सूतल लोक से लेके आए द्वारका में. और जब माता देवकी ने अपने बच्चों को देखा, उनके स्तन में दूध आया. जो दूध भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देवकी के स्तन से पान किया, उस दूध को प्रसाद के रूप में जब षड गर्भों ने पान किया, तब वो असुर योनि से मुक्त होकर वापस मरीचि के पुत्र के रूप में देव योनि को प्राप्त हुए. वो हंसे थे ब्रह्मा जी के ऊपर. जब ब्रह्मा जी अपनी लड़की वाघ के पीछे भागे थे काम वासना से, तो वो हंसे थे. इसलिए उनको ब्रह्मा जी ने साप दिया कि असुर हो जाओ. तो वो हिरण्याकश के पोते के रूप में प्रकट हुए थे और बड़ी तपस्या कर रहे थे. तो हिरण्याकश ने साप दिया कि तुम्हारे बाप तुम्हारे को मारेगा. तो कालनेमी उनका पिता था पूर्व जन्म में, और कंस कालनेमी बन के आया और अपने ही छह बच्चों को उसने मारा. तो यहां ये पर्पट बहुत बड़ा है, कल इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे. तो बलराम जी क्या है? संकर्षण उसको कहते हैं. और वो मेरा धाम है, वो मेरा पोर्शन है, और मेरा फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण इज बलराम. अरे कृष्णा, कल बलराम आविर्भाव है. श्री बलराम आविर्भाव तिथि आने वाली महोत्सव की, श्री कृष्ण बलराम की राय. गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम.